یہ کریا شکتی ہی ہے شریر میں وجمان ہے جو کسی کے دوارا یہ سارے سمپادت ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں یہ کہ ایک شکتی کریا شکتی اور ہے جو ہمارے چاہے نہ چاہنے پر بھی اپنے آپ سے ہمارے شریر میں کاریہ کرتی رہتی ہے. یہ کریا شکتی جو ہے وہ پاچن کریا کر رہی ہے. ہم سوتے جاتے کسی سمے ہے پاچن کریا کاری کرتی رہتی ہے. ریکٹر میں جا کر کاری ہوتا رہتا ہے. پردے میں کرتی رہتی ہیں. یہ سب انیک پرکار کے کاریہ ہیں جو اپنے آپ سے ہوتے رہتے ہیں. یہ کاریہ یہ ہے کریا شکتی کے واسطے. یہ جو کریا شکتی ہے اس کا نام پران ہے. تو اب کوئی ویکتی جیسے اس کو بتایا تو پران کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ سب شریر میں جو کریا ہو رہی ہے ایک شکتی کاریہ کر رہی ہے اس شکتی کا نام پران ہے. جیسے پران کو پہچانا جا سکتا ہے اسی پرکار سے ویکتی اپنے من کو بھی پہچان سکتا ہے. व्यक्ति से कहें कि देखो जो कुछ आप देखते हैं उसे मन ग्रहण करता है. जो कुछ आप सुनते हैं मन से ग्रहण करता है. जो कुछ सुनते हैं स्पर्श करते हैं आदि हैं स्वादा देते हैं उसको मन ग्रहण करता है. मन में सबका पता चलता है ऐसा स्वाद है ऐसी गंध है ऐसा स्पर्श है ऐसा रूप है ऐसे शब्द हैं ये सब आपको मन में पता चलते हैं. तो जो इन सब को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले विषयों को जो ग्रहण करता है जो इनको जानता है वो है मन. तो अपना मन दिखाई दिया. अब जो व्यक्ति थोड़ा प्रबुद्ध होंगे अंदर उनकी उनकी दृष्टि होगी वे अपने मन को पहचानने के लिए हमारा मन है. इस मन से ही हम इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं. और जो कुछ हमको ज्ञान हो रहा है सब ग्रहण कर रहे हैं तो सब हमारे मन में आ रही है. मन शब्दों को ग्रहण कर रहा है. फिर हम शब्दों का अर्थ भी समझते हैं. अर्थ कैसे समझते हैं अपनी बुद्धि से समझते हैं. जो शब्दों का हम अर्थ सुन रहे हैं वो बुद्धि है. तो बुद्धि को भी पहचाना जा सकता है. ये बुद्धि है. इसमें कोई अज्ञात वस्तु नहीं. इन सबको अपने भीतर कोई व्यक्ति देखे तो मन को भी पहचान सकता है अपनी बुद्धि को भी पहचान सकता है. ये रहा हमारा मन और ये रही हमारी बुद्धि. बुद्धि के द्वारा हम शब्दों के अर्थ को समझ रहे हैं. बुद्धि के द्वारा हम अपने पूर्व ज्ञान का विस्मरण भी करते हैं. पहले जो हमने देखा सुना जाना उसका स्मरण कैसे आता है तो दिखे जाता है. स्मृति शक्ति भी बुद्धि में है. तो स्मरण कौन करता है तो अपने आप विचार करके देखेंगे ये बुद्धि है. क्योंकि स्मरण आते हैं तो अपनी बुद्धि को भी पहचान. इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने मन को देख सकता है अपनी बुद्धि को देख सकता है तो वो ये भी देख सकता है कि मन और बुद्धि जागृतावस्था में कार्य करते हैं और स्वप्नावस्था में कार्य करते हैं. स्वप्नावस्था में मन कार्य करता है. जैसे जागृतावस्था में करता है वैसे ही स्वप्नावस्था में भी करता है. जब हम रात्रि में सोते हैं स्वप्न दिखाई देता है तो स्वप्न के शब्द भी सुनाई देते हैं. स्वप्न में रूप भी दिखाई देते हैं. अन्य और भी वस्तुएं स्वप्न की जितनी है उनको जानते हैं. जो इंद्रियों से जानने की होती है स्वप्न में जानते हैं. जानने वाला कौन हम करता कौन ग्रहण करता हम सबको मन ग्रहण करता है. तो वो मन स्वप्न में भी विद्यमान है. ये सब अनुभव है. कोई व्यक्ति की तरफ ध्यान दे तो ये सबका अनुभव है. कोई विचित्र बात नहीं. ये मन स्वप्न में भी कार्य करता है. बुद्धि भी स्वप्न में कार्य करती है. तो जागृतावस्था में मन बुद्धि के कार्यों को देखें. स्वप्नावस्था में मन बुद्धि के कार्यों को देखें और फिर देखें कि सुषुप्ति अवस्था में मन कार्य नहीं कर रहा है. बुद्धि काम नहीं कर रही. जब हम गहन निद्रा में होते हैं स्वप्न भी नहीं दिखाई देता. तब मन क्या कार्य करता दिखाई देता है, बुद्धि कार्य करती दिखाई देती है, कार्य नहीं करते। अब देखो हम ये भी जानते हैं कि मन शिक्षितावस्था में कार्य नहीं करता, बुद्धि शिक्षितावस्था में कार्य नहीं करती। जिस समय मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं इसके माने मन बुद्धि नहीं है। और ये कौन जान रहा है कि हम मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं? अब ज्ञाता कौन है? भाई देव के सब बातों को हम इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से जानते हैं, लेकिन शिक्षितावस्था में मन बुद्धि कार्य नहीं करते, इंद्रियां भी कार्य नहीं करती, सब कुछ भी अनुभव में नहीं आता है, इसका जानने वाला कौन है? अभी देखो धीरे धीरे करके देखें तो ऐसा मालूम होता है कि इनसे भिन्न होकर के भी कोई और अस्तित्व है जो इन सब का जानने वाला है। वो सूक्ष्म होता जाता है, जैसे शरीर स्थूल है, प्राण उससे भी सूक्ष्म है, मन बुद्धि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और फिर जब मन नहीं होते तो उनका जानने वाला जो है वो और भी अधिक सूक्ष्म है। जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी पकड़ने में नहीं आता, लेकिन जब मन बुद्धि कार्य न करें और हमें मालूम होता है कि मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे थे तो इस प्राणियों का जानने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। ये सब कहता है कि कोई जानने वाला अवश्य होना चाहिए, तो जानते हैं कैसे पता लगे मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे थे? और जानने वाला अगर है तो फिर वो क्या है, कैसा है? अब उसको जब बहुत ही एकाग्र होकर के बहुत सावधानी उधर ध्यान दे तब विचार करे तब समझ में आवे कि एक चेतना और भी है जो चेतना मनुष्य के न होने पर भी स्वयं विद्यमान रहती है और उसका अभाव नहीं होता। मन बुद्धि तो कभी है और कभी नहीं, लेकिन मन बुद्धि का प्रकाशक एक चैतन्य और भी है जो कि उसको इनको प्रकाशित करता है और सदा विद्यमान रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ये जो चैतन्य है इसका क्या स्वरूप है, ये कैसा है? अब देखते हैं, पहला क्षण भी यही दिखाई देता है कि ये सदा विद्यमान रहता है। मन बुद्धि सदा नहीं रहती, कभी है कभी नहीं रहते, लेकिन ये चेतना सदा विद्यमान है, ये कभी भी इसका अभाव नहीं होता। ये चेतना जागृता अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है, और सुषुप्तावस्था में जब मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं तभी ये चेतना विद्यमान है। ये चेतना तीनों अवस्थाओं में एक समान विद्यमान है और तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करती है और इसका अभाव कभी भी नहीं होता। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये हमारे मन बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं। जब मन बुद्धि स्थूल शरीर से बाहर होकर के बाह्य जगत में व्यवहार करते हैं तो जागृत अवस्था है। जब मन बुद्धि हमारे शरीर में स्थित होकर के स्थूल शरीर में स्थित नहीं होता बल्कि ये मन बुद्धि अपने सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं और एक काल्पनिक जगत की स्मृति के द्वारा जिसकी रचना हुई सपने की उसी के बीच में घिरे रहते हैं और उसी का अनुभव करते हैं, तब ये सपना होता है। और जब ये मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं, तब ये सुचित्ता अवस्था है। तो ये अवस्थाएं जो बदलती हैं वो मन बुद्धि के कारण से बदलती हैं, मन बुद्धि कभी है कभी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तीन अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्थाएं बदलती हैं और तीनों अवस्थाओं के बदलने का कारण मन बुद्धि का होना न होना है, उनका कार्य करना या कार्य न करना है। तो अब वो कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता है, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है? अब जो व्यक्ति धीरे धीरे करके इस तत्व को अपने अंदर पहचान सकता है, अपने हृदय में एकाग्र होकर के सब तत्व ध्यान जाकर के बड़ी सावधानी से इसको देखेगा तो धीरे करके हाँ ये चेतना इस प्रकार से जरूर अवश्य और नित्य विद्यमान है, चौबीस घंटे ही समान रहती है, इस चेतना का कभी अभाव नहीं होता, नित्य चेतना। जैसे व्यक्ति बेहोश हो गया ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, इसकी चेतना चलेंगे, होश में आ गया क्या चेतना आ गई, चेतना आ गई। अब जिसमें किस चेतना की हम बात करते हैं कि जब हमारे मन बुद्धि है जब काम नहीं करते कितना चाहिए, मन बुद्धि आ गए फिर काम करने लगे तो मैं कितना आ गई। हम बोलते कुछ हैं बोला कुछ है, और कुछ समय की हम कहते हैं कितना चली गई, कभी कितना जाती है, कितना भी समय जितना मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए ऊपर लगता है मान और चेतना जो है वो शिशुता अवस्था में विद्यमान रहती है, चेतना जो है बेहोशी की अवस्था में विद्यमान रहती है, चेतना समाज की अवस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में मन बुद्धि कार्य नहीं करते। जब मन बुद्धि कार्य नहीं करते तब चेतना स्वयं अपने आप से अपने आप को प्रकाशित करके ज्ञान देती है। दो अवस्थाएं अज्ञान की, शिशुता अवस्था और ज्योति की अवस्था, अज्ञान की अवस्था। तो समय व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि हम चेतना स्वरूप है, अनादि में चेतना विद्यमान है और वही हमारा स्वरूप नहीं होता। लेकिन समाज की अवस्था में जब व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने मन बुद्धि को शांत कर देता है अभ्यास के द्वारा, तो जैसे जैसे मन बुद्धि शांत होते जाते हैं वैसे व्यक्ति चेतना का प्रकाश पूर्वक उसे अनुभव आता जाता है और इसको कहते हैं समाज। और इस अवस्था में व्यक्ति को अपने चेतन स्वरूप आत्मा का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। ये दिखाई देता है कि हम चेतना जो विद्यमान यही अपना स्वरूप है यही मैं हूँ, उसका साक्षात नहीं हो सकता है। इस चेतना में वे सब लक्षण उपलब्ध हैं जो लक्षण की उपनिषदों में ऋषियों ने आत्मा के बताए। यहाँ पर भी हमने गीतावाच उपनिषद में भी देखा चार श्लोकों ने आत्मा के लक्षण बताए, वे सब लक्षण जितने लक्षण बताए गए इसी आत्मदर्शन में जहां हम पहुंच गए हैं इस आत्मदर्शन में उनके लक्षण देखे जा सकते हैं। एक एक शब्द का स्मरण करें और देखें कि इस आत्मा में भी जो लक्षण है कि नहीं, तो सब लक्षण उसमें उपलब्ध हो गए और व्यक्ति की विकास हो जाएगा कि ये आत्मा अपना स्वरूप है। और जैसा कि सूत्रों में बताया गया है व्यक्ति इसके सब लक्षण, इतना ज्ञान होने के बाद यदि कोई व्यक्ति निरंतर उसे आत्मभाव में स्थित रहने का अभ्यास करे तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसकी शेष वासनाएं रहेंगी है रजोगुणी और सत्वगुणी वे वासनाएं भी धीरे धीरे शांत होती जाती है। और जैसे ही वासनाओं का प्रभाव शांत होता जाता है वैसे ही आत्मा का प्रकाश और आत्मा का आनंद अधिक स्पष्ट होता जाता है। कालांतर में व्यक्ति देखता है कि आत्मा अपना स्वरूप चेतन स्वरूप ही नहीं आनंद स्वरूप है और आत्मा के आनंद का अनुभव उसको नहीं होता। आत्मा का दर्शन पहले सब स्वरूप में होता है कि आत्मा में विद्यमान है, फिर उसका अनुभव होता है कि आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है, फिर आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा एक और अनंत है, उसकी अनंतता का अनुभव होता। आत्मा की अनंतता का अनुभव होने के बाद व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव होता है और पूर्णता के अनुभव के साथ ही आनंद की अनुभूति होने। छात्रों के विषय में संत कुमार नारद जी को उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि देखो योग ही भूमा तब सुखम यदम शरणार्थी, ये जो भूमा है जो पूर्ण है यही आनंद है। जहाँ आत्मा की पूर्णता का अनुभव हुआ तो ऋषि कहते हैं पूर्णता का लक्षण ही अंधता ही है। जब व्यक्ति अपने आप को अल्प करके मानता है तो अंधता में दुख है, अंधता में अभाव रखता है, अभाव के साथ कामना आती है और कामना के साथ दुख होता है। जब व्यक्ति में पूर्णता का अनुभव होता है तब पूरा के साथ में तृप्ति होती है, संतोष होता है, कृतज्ञता होती है, धन्यता होती है और सुखानुभूति होती है। ये है आनंद, ये सुख जो आत्मा का है, ये है निर्विशेष आनंद, ये किसी वस्तु विशेष का आनंद नहीं, ये अपने ही स्वरूप का आनंद है। इसलिए ये आनंद अपने प्रकार का आनंद है। अज्ञान की अवस्था में भी व्यक्ति को इसी आनंद का सुख मन बुद्धि में होता है, लेकिन वो परिचित आदत है, थोड़ा थोड़ा करके और किसी न किसी वस्तु के साधन से प्राप्त होता हुआ मालूम होता है। और ये है मन बुद्धि में जितनी ही शांति और जितनी निर्मलता होती है, उतनी ही अनुपात में ये सुखानुभूति होती है। तो यह अज्ञान की अवस्था में जबकि व्यक्ति जीव भाव में और शरीर भाव में तब जो सुख होता है, वो हो आत्मा के आनंद का एक बहुत छोटा भाग, बहुत छोटा आभास मात्र सुखता स्वस्था करके होता है, वही आनंद। लेकिन जहां ये आवरण हटे और आत्मा स्वरूप का स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ और उसकी पूर्णता का ज्ञान हुआ, उसी के साथ साथ आनंद की भी तीव्रता का अनुभव होता है कि आनंद कितना तीव्र है, कितना गहन है। ये आनंद जो ये है कहीं रोके नहीं सकता, इसकी कोई सीमा नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। इस प्रकार से इस आनंद की अनुभूति होती। इस क्रम से यदि कोई व्यक्ति जैसे कि प्राण को पहचानता है, मनुष्य को पहचानता है, जैसे ही आत्मा को पहचाने तो पहचान सकता है। लेकिन पहचानने की बात यह है कि सूक्ष्मा सूक्ष्म होने के कारण और मन बुद्धि से जैसे सूक्ष्म होने के कारण जब तक ये व्यक्ति सूक्ष्म दर्शन का अभ्यास नहीं होता और मन बुद्धि शांत और निर्मल नहीं होते, तब तक इनका अनुभव होता नहीं। इसलिए एक दूसरा ध्यान भी है अपने आत्मस्वरूप और परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जिसे उपासना कहते हैं। और समाज में अधिकांश व्यक्ति उपासना ही करते हैं। ज्ञान की तरफ और ज्ञान का मार्ग और ज्ञान का तरीका ये बहुत जल्दी लोगों को जरा जरा कभी पा लेता है। अधिकांश लोग जो कुछ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उसके बाद उपासना नहीं करते, जो उपदेश सुनते हैं श्रवण करते हैं उससे उपासना नहीं करते। अधिक से अधिक लोग उपासना कर रहे हैं, लेकिन उपासना किस प्रकार से करते हैं? उनकी उपासना जहां जो संकेत के लिए, जहां जो आर्जित गई, उसी प्रकार की उपासना करते जाते हैं। और उपासना की प्रक्रिया क्या है, उसका रहस्य क्या है, ज्ञान से हटकर की उपासना क्या है, ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती। इसलिए उपासना में जितना उत्साह होना चाहिए और जितनी जड़ता होनी चाहिए उतनी काया लोगों में होती नहीं। और बहुत दिन उपासना और बहुत दिन तक भगवान की भक्ति करने पर भी उनको अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति जो है वो एक उसका ही नियम है, एक तरीका है, उसको ठीक ठीक से करनी है। ये उपासना ही भक्ति का ही अंग है। उपासना के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति उपासना करता रहता है, करता रहता है, धीरे धीरे करके उसके हृदय में भक्ति का विकास होता रहता है। ये उपासना क्या है इसको देखिए। उपासना दो प्रकार है, एक दैनिक उपासना और दूसरी प्रमाणिक उपासना। वैदिक उपासना जो है वो हमारे उपनिषदों में लिखी, उपनिषदों में जो बताई गई उपासना है वो वैदिक उपासना। और जो फिर रामायण महाभारत भागवत आदि ग्रंथों से जो उपासना हमको प्राप्त हुई, इसको हम पौराणिक उपासना कह सकते हैं। जब पुराण रचना नहीं हुई थी, केवल वेद और उपनिषद ही थे, उस समय वैदिक उपासना का ही प्रचलन था। जब ये पुराणों की रचना हुई, रामायण और महाभारत की रचना हुई, व्यासी का कार्य सामने आया, वाल्मीकि का कार्य सामने आया, सब उसके बाद फिर जो है पौराणिक उपासना भी आया। वैदिक उपासना में सूर्य उपासना, प्राण उपासना, अग्नि उपासना, इस प्रकार की उपासनाओं का वर्णन था। पुराणों में जब आए तब भगवान शिव की उपासना, भगवान राम की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, देवी जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, सूर्य की उपासना, इस प्रकार की उपासना ये उपासना नहीं, यह पौराणिक उपासना है, बाद का विकास है। प्राचीन काल की उपासना हो इस प्रकार की नहीं, जितनी पौराणिक उपासना जो वैदिक उपासनाएं हैं उनमें अवतारों का उल्लेख है। अवतार वर्णन उस समय तो उपासना जो हम प्रकृति देखते हैं, जैसे सूर्य को देखते हैं, उस सूर्य के सहारे ही परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास सूर्य उपासना। हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि में आहुतियां देते हैं, यज्ञ करते हैं, वही अग्नि जो है उस अग्नि की उपासना करते हुए हम परमात्मा तक पहुंचे। इस प्रकार की उपासना वैदिक उपासना है। वैदिक उपासना में तीन भाग किए गए। कोई भी वैदिक उपासना हो, चाहे सूर्य उपासना हो, चाहे अग्नि उपासना हो, उसको तीन भाग किए गए। प्रत्येक उपासना के तीन चरण हैं। एक आदिभौतिक और दूसरी जो हो आदिदेवी और तीसरी आध्यात्मिक। उपासना के तीन भाग रहते हैं। आदिभौतिक उपासना के माने जैसे सूर्य उपासना ही है, तो सूर्य आकाश में सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, उनके सामने खड़े होकर के हमें सूर्य की स्तुति की और उसमें सूर्य का अधिष्ठात शक्ति जो है परमात्मा ही है, परमात्मा ही सूर्य के रूप में व्यक्त हो रहा है, ऐसे समझ करके हमने अपनी उपासना की। तो ये आदिभूति उपासना है। कुछ दिन तक इस प्रकार की उपासना करने के बाद फिर उपासना का दूसरा रूप आता है कि हम स्वयं शांत एकाग्र स्थान में बैठ करके जो सूर्य आकाश में है सूर्य देवता, वही सूर्य देवता हमारे नेत्र में भी विद्यमान है और नेत्र में जो देखने की शक्ति है वो सूर्य देवता के ही कारण है। इसलिए नेत्र में स्थित सूर्य देवता की उपासना आदिदेवी की उपासना है। अपने नेत्र में स्थित जो सूर्य देवता है उसका अनुभव करना ये सूर्य देवता है और ये देवता है ये सूर्य का, ये परमात्मा का ही एक रूप। इस प्रकार से उसकी उपासना करना ये आदिदेवी उपासना है। और फिर तीसरे प्रकार की उपासना ये है कि परमात्मा जो शुद्ध चेतना स्वरूप अनंत शक्ति है वही नेत्र में सूर्य होकर के विद्यमान है, वही आकाश में सूर्य होकर के विद्यमान है, सूर्य का आकाश का सूर्य का जो प्रकाश तत्व है, जो आकाश के सूर्य में विद्यमान सूर्य देवता है उसका प्रकाशक, और हमारे नेत्र में विद्यमान जो सूर्य देवता है उसका प्रकाशक, दोनों का प्रकाशक एक ही आत्म तत्व है, आत्मा ही इन दोनों को प्रकाशित करता है। इसलिए इन आत्मा वो तत्व है जो नित्य विद्यमान है, वही नेत्र में सूर्य देवता होकर के विद्यमान है, आकाश में प्रकाशमान सूर्य में वही सूर्य देवता होकर के महाविद्यमान है। इस प्रकार से उपासना करते करते व्यक्ति अपने आत्मा तक और उस चेतना तक पहुंच जाता है जो चेतना की देवता बनकर के सूर्य में, देवता बनकर के हमारे नेत्र में विद्यमान है। उपासना करते करते बुद्धि की गहिर्मुखता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, अंतर्मुखता आती जाती है, मन बुद्धि निर्मल होते जाती है, उनमें एकाग्रता आती जाती है, उनमें शांति आती जाती है, संतुलन आता जाता है। हम जिसका विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी में हम हमारी बुद्धि एकाग्र होकर किसी की रहना गलत हो जाती है और धीरे धीरे करके वो बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आत्मामय हो जाती है। उपासना की एक बात ये भी कि जब हम उपासना करते हैं तो एक तो होता है उपास और एक होता है उपासक। हम मानो मन बुद्धि में अहंकार रखने वाले उपासक, हम सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं तो हमारा उपास्य हुआ सूर्य देवता। सूर्य देवता का तात्पर्य यह है कि बाहर जो सूर्य दिखाई देता है ये सूर्य देवता का शरीर है, ये सूर्य देवता नहीं है ये चंद्रमाता में दिखाई देता है, ये सूर्य देवता का स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में जैसे अपने स्थूल शरीर में जीव का वास है इसी प्रकार समझते हुए सूर्य के भीतर सूर्य देवता का वास। जब यह सूर्य ठंडा हो जाएगा सृष्टि समाप्त हो गई नष्ट हो गई सूर्य समाप्त हो गई तो सूर्य देवता का शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन सूर्य देवता फिर भी रहेगा। वो जो सूर्य देवता है हम उसकी उपासना करते हैं कि एक देवता है जो कि सूर्य विद्यमान है और वो चेतना का पुण्य है और उसमें इस तरह शक्ति है कि उसके कारण से ये सूर्य का ऊपर ही शरीर स्थित है विद्यमान और प्रकाश पाने के कारण से। तो जो सूर्य का सूर्य देवता है उसकी उपासना हम करते हैं, सूर्य के शरीर देखते हैं सूर्य को उपासना करते हैं सूर्य देवता से। उपासना में एक विशेष बात यह है उसको ध्यान रखना चाहिए धीरे धीरे करके अभ्यास कर लें क्योंकि उपासना ही हमारे साधनों के साधन अधिकांश उपासना ही है। उपासना में हम एक स्थूल वस्तु जो कि दिखाई पड़ने वाली वस्तु है ग्रहण करने योग्य है उसको तो हम देखते हैं और उसमें एक उत्कृष्ट वस्तु की कल्पना करते हैं। सूर्य को तो हम देखते हैं और सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली विद्यमान सूर्य देवता है जो उसमें बात कर रहा है उसका हम स्मरण करते हैं। उपासना में दोनों बात ये इसी प्रकार से यदि हम कहीं शंकर जी की मूर्ति है तो देखते तो शंकर जी की मूर्ति है लेकिन उसमें शिव तत्व जो परमात्मा है उसका हम स्मरण करते हैं और पूजा उसमें तत्व की करते हैं पत्थर की पूजा नहीं करते पत्थर को हम देखते हैं उसको एक माध्यम मीडियम मीडियम बना लिया और उसमें व्याप जो परमात्मा है वो उसमें व्यापक है उसको और उसमें व्याप हम उसकी पूजा करते हैं। जब शिव शंकर जी की हम पूजा करें तब हमको उस तत्व की जो शिव तत्व का उसका स्मरण करना चाहिए उसका स्मरण करने के लिए ही शंकर जी के स्तोत्र हैं। महामांगे जयमान भूल परामे अभी हम स्तोत्र शंकर जी के हैं वो इसलिए शंकर जी का पूजा करें तो इस स्तोत्रों का आपको देखें तो हम शंकर जी का स्तर पहुंच जाते हैं जो कुछ में जाते हैं उसका स्मरण करते हैं। उपासना में इन सब बातों का स्मरण रखना चाहिए धीरे धीरे करके अपने उपासना में इनका सदा अभ्यास है जिससे हमारी उपासना जो है करोड़ रहे प्रभावशाली रहे और लाभदायी दिखाई दे कि जो उपासना कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे कि कभी उसमें जो उसका उपासना करता है वो भी हमारे जीवन में देखने में आ रहे। इसलिए जब उपासना करते हैं उसी बात आ रहे हैं जैसे सूर्य उपासना करते हैं तो हम सूर्य में सूर्य देवता की कल्पना करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए निरंतर उसी और उपासना करने वाले हम। लेकिन उपासना का अभ्यास इस प्रकार से करे एकाग्रता इतनी रहे कि धीरे धीरे उपासक जो है वो अपने अस्तित्व को विस्तृत कर दे और जो उपास्य है उसी का स्मरण रखे। हम अपना स्मरण न करें कि हम शरीर हैं हम उपासना कर रहे हैं हम मन हैं इधर की तरफ ध्यान रखें जो उपास्य है जैसे सूर्य देवता हमारा उपास्य है उसी का इतना स्मरण करें इतना स्मरण करें एक दूसरे उसी के साथ जैसे जो करके सदाकार हो जाए और दूसरी की बुद्धता समाप्त हो जाए तो केवल सूर्य देवता ही रहे। इतना अभ्यास करते करने के बाद फिर वो अपने आप में जो हम नेत्र में विद्यमान सूर्य देवता है उसकी इसी प्रकार की उपासना करते हैं। और फिर तीसरी उपासना इस प्रकार से करते हैं कि जो इन दोनों का प्रकाश जो चैतन्य है जो इधर हमारे नेत्र इंद्रिय में बात करने वाली जो चेतना जो हमारे नेत्र में स्थित जो एक शक्ति है जिसके द्वारा हम रूप आदि रंग आदि देखते हैं ऐसे देखने की जो शक्ति है वो सूर्य देवता है। और इस सूर्य देवता का भी प्रकाशक एक चैतन्य है जो नित्य विद्यमान है। उस चेतना पर आकर के आत्मतत्व की चेतना पर करके हम देखें अपने अनुभव करें अपने नेत्र को अनुभव करें नेत्र के देखने की शक्ति को और उसके बाद अनुभव करें चेतना का और उस चेतन तत्व का इतना अनुभव करें करते करते कि अंततः हम जो है वो अपने अस्तित्व को भूल जाएं और वो चेतना ही अनुभव रहे। इस प्रकार से कालांतर में एक उपासना चाहे सूर्य उपासना हो चाहे अग्नि की उपासना हो और चाहे प्राण की उपासना हो इन सब की उपासना करते करते व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया पौराणिक उपासनाओं में भी शंकर जी की उपासना करते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से शंकर जी के जो भक्त हैं उनके उपासक हैं वो भी उपासना इसी प्रकार से। शंकर जी के दो रूप हैं एक तो निर्गुण निराकार रूप एक सगुण रूप और इसके बाद एक रूप है उनका मूर्त रूप जो पत्थर की मूर्ति है मूर्त रूप और फिर वो परमात्मा जो है वो सगुण निर्गुण दो प्रकार के परमात्मा। तो सगुण रूप में परमात्मा भगवान शिव उनका स्मरण करें इस प्रकार से भगवान शंकर जी वो सार रूप में बैठे हुए हैं आसन कराए हुए बैठे हुए हैं चंद्र उनके जो वो जटाएं बनी हुई हैं और उनमें गंगा जी प्रवाहित हो रही है भारत पर चंद्रमा विराजमान है शंकर जी का शरीर उद्वर्ण है और उनके जनेऊ धारण किए हुए हैं गोछाला पहने हुए हैं और शाम भाव से ध्यान मग्न भगवान शंकर जी करते। इस प्रकार से भगवान का शंकर जी का मन में स्मरण करना ये भगवान शंकर जी की उपासना है और सर्व उपासना है। सर्व उपासना करते करते व्यक्ति बाहर से उपासना न करके अपने मन में ये क्रम रहेगा। पहले तो शंकर जी की पूजा करे बाहर रूप से मूर्ति की कुछ दिनों तक वही करे और वो करते करते शंकर जी में भी मूर्ति पूजा करते समय शंकर जी का स्मरण करें शंकर जी का स्मरण बात है उनके मन में पूजा करें ये उपासना। अब दूसरी उपासना ये कि पूजा करने के बाद में आत्मा करके बैठे और वही शंकर जी का जो सगुण रूप है वो अपने हृदय में स्मरण करें और इतनी तीव्रता से स्मरण करे कि वो रूप हृदय में आ जाए और वैसे ही दिखाई देने। जब वो रूप दिखाई देने लगे तो केवल भगवान का शिव रूप ही हमारे हृदय में रहे और उस शिव रूप का देखने वाला जो है अपने आप को भूल जाए। हर उपासना में प्रयास ये करना है कि व्यक्ति उपासक अपने आप को विस्मृत कर दे और जो उपास्य है उसी की प्रधानता हो जाए वही अनुभव में आ जाए वही देखने में आ जाए। शंकर जी की उपासना में भी इसी प्रकार है। फिर ये भी देखे कि अपने हृदय में जो शंकर जी का ये रूप दिखाई दे रहा है वो किस प्रकाश में दिखाई दे रहा है। क्या सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच गया है जिसमें शंकर जी अपने हृदय में दिखाई है? क्या बिजली का प्रकाश वहां अपने हृदय में पहुंच गया जिस प्रकाश में दिखाई है? यदि हम प्रातःकाल उठकर के 4 बजे बैठ करके अंधकार में बैठे हुए हम शंकर जी का ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं और हृदय में शंकर जी दिखा रहे हैं तो बाहर से कोई प्रकाश नहीं भीतर काफी प्रकाश आ गया जिस प्रकाश में शंकर जी दिख रहे हैं उसके और भी ध्यान। तो जिस प्रकार में भगवान शंकर जी का ये रूप दिख रहा है ये प्रकाश नित्य है। देखें कि ये प्रकाश नित्य है जिस प्रकाश में भगवान शंकर जी का सब उनका काबिल तुम्हारे अंदर मिला है। और ध्यान करते करते कदाचित थोड़ी देर में नंद जी का वो रूप लुप्त हो जाए, हो जाए न दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकाश पहले भगवान शंकर जी के रूप को प्रकाशित कर रहा था वो प्रकाश अभी विद्यमान है और उसी प्रकाश में दिखाई देता है कि अब शंकर जी दूसरे होता नहीं। शंकर जी की मूर्ति हो हृदय में या न हो, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश विद्यमान, उसका भी ध्यान करें। ये प्रकाश, ये जो नित्य प्रकाश से वो हो प्रकाशवान है, यही प्रकाश ही मूर्तमान रूप होकर के शंकर जी का रूप धारण कर लेता है। और शंकर जी का रूप जब लुप्त होता है तो इसी प्रकाश में प्रवृत्त होता है। ये है उपासना की उचित भूमिकाएं हैं जहां तक व्यक्ति को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और इन उपासनाओं में ये भी है कि व्यक्ति के हृदय में जैसे जैसे आगे उपासना करता जाता है वैसे शांति और सुख आनंद की भी अनुभूति होती है। कुछ दिनों तक उपासना करने के बाद यदि आनंदानुभूति होने लगी अपने अंदर, तो फिर उस आनंद के बल पर उपासना करता हुआ व्यक्ति आगे सहज ही बढ़ता जा सकता है। जब तक उसके आनंद की अनुभूति नहीं होती तभी तक उसे नियम बनाना, रोज बैठना, रोज उपासना करना, इसके लिए बल पूर्वक करना पड़ता है। और ये व्यक्ति को बल इसलिए लगाना पड़ता है तो उसको पीछे खेचने वाला तमोगुण और रजोगुण में विद्यमान है। जैसे जैसे उपासना का रजोगुण तमोगुण ये सब क्षीण हुए वैसे वैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा और अपने आप धीरे धीरे करता हुआ परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए। जैसे हमने शंकर जी को उदाहरण देकर के बताया, यही बात यदि हमारे कृष्ण भगवान राम है तो भी इसी प्रकार से उपासना। जिन लोगों के इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं, उनको भी इसी प्रकार की उपासना है। और जो लोग की देवी जी के उपासक हैं, उनको भी इसी प्रकार की उपासना है। देवी जी जो है वो दुर्गा देवी है, तो वो भी देवी या महालक्ष्मी है या दुर्गा है, ये भी कोई परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा स्वयं अपने आप में न स्त्री है न पुरुष, वो परमात्मा न छोटा है न बड़ा, वो परमात्मा एक ही है। अलग अलग उपासकों के लिए वही परमात्मा अलग अलग रूप में विद्यमान है। जो परमात्मा जो भगवान राम होकर के विद्यमान है, जो शिव जो होकर के विद्यमान है, वही परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में विद्यमान है, वही परमात्मा देवी के रूप में विद्यमान है, वही परमात्मा दैव के रूप में विद्यमान है। ये आकार रूप जितने भी है, ये सगुण रूप जितने भी हैं भगवान के, ये सब व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि के अनुसार हैं जिनका भी सहारा ले सकता है। और ये सब के सब हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित हैं, इसलिए स्वीकार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपने मन से परमात्मा को कोई रूप मान ले, पता नहीं। परमात्मा का रूप वही माना जाएगा जो शास्त्र बताएंगे। उपासना करने में भगवान के बताए हुए जो भी कुछ शास्त्रों में है, रामायण में है, भागवत में है, उपनिषदों में है, जो भी रूप बताए गए हैं उन देवी को भी लेकर के उनकी उपासना की जाए। उपासना का सिद्धांत ये है कि जो उपास्य है का वास्तविक स्वरूप हमको अनुभव में नहीं आता, किंतु शास्त्र के आधार पर हम उसे स्वीकार करते हैं, सत्य मानते हैं और उसका स्मरण करते हैं। जब हम उसका स्मरण करते हैं तो ये उपासना शास्त्र में बताए बताए हुए परमात्मा के आत्मा स्वरूप के परमात्मा स्वरूप का यदि हम अपने हृदय में अनुभव करते हैं तो ये ज्ञान है। यदि हमें उस परमात्मा का अनुभव नहीं आ रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है वो परमात्मा, तो वैसे ही उन लक्षणों से युक्त परमात्मा का हम स्मरण करते हैं तो ये उपासना। स्मरण करते करते भी हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। एक आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक पुराने गांव के पास की हुई सड़क जा रही है, सड़क से निकला और देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मकान गिरा पड़ा है। दिखाई देगा थोड़ी दूर पर 15-20 कदम पर सड़क एक मकान गिरा पड़ा है और उस मकान में कोई नहीं रहता, दीवारें खंडित दीवारें खड़ी, दीवार के बीच में कुछ उसको चमका। तो अब उस व्यक्ति ने सोचा कि दीवार में क्या चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है, इसमें कोई हीरा पन्ना कोई प्रकार का कोई कीमती पत्थर इस प्रकार का रूप कोई चमक रहा है, हो सकता है पुराना मकान हो। और इसमें किसी व्यक्ति ने पुराने जमाने में हीरा पन्ना को काट कोई इस प्रकार का लेकर के दीवार में दबा दिया हो और बाद में वो मर गया हो, मकान भी गिर गया हो, अब मकान गिरते गिरते उनसे अब निकल आया हो चमक रहा हो। तो अब वो व्यक्ति सोचता है देखना चाहिए, यात्रा तो करते करे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो वो व्यक्ति जब उस तरफ बढ़ता है वहां जाकर के पहुंचता है और दीवार में से निकाल करके खुद कर देखता है तो वास्तव में उसे एक पत्थर दिखाई देता है। तो आप मेरे काम करते हो उसको बताइए तो कोई लाल पत्थर के लिए उतार कोई सुधार कर तो ले जाकर के चौड़ी को दिखाता है। अब ये जो प्रक्रिया जो दृष्टांत दी है जिस प्रकार से वो मूल्यवान पत्थर उस व्यक्ति को मिला, यही प्रक्रिया उपासना की। उपासना करते करते व्यक्ति अपने हृदय में ही विद्यमान परमात्मा रूपी मूल्यवान पत्थर विद्यमान और उसको व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन प्राप्त करता है गुरु के सहारे, शास्त्र के सहारे। वो बताता है कि देखो अपनी जहां पहुंचो यही आत्मा है, यही परमात्मा, इसमें अपनी बुद्धि को अपने भाव को जल करो, इसी में से गोस्वामी ज्योतिदास जी कहते हैं इसी भाव को ऐसे व्यक्त करते हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सब चेतन घन आनंद राशि अत प्रभु हृदय अक्षर अधिकारी सकल जीव जग जीव दुखारी नाम निरूपण नाम जतन से सूत्र विगत जी में मूल रतन से। कहते हैं कि वो परमात्मा जगत के लक्षण पहले बता दिए कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन अंतराशि अत प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी। जब वो परमात्मा व्यापक है और आनंद स्वरूप है तो अपने हृदय में भी बात करता है, उसमें तो ये हुआ कि हमारे हृदय में भी परमात्मा सदर जाकर तो हमारे हृदय में भी, और वो आनंद स्वरूप है तो वो आनंद स्वरूप होकर के हमारे हृदय में विद्यमान है। ऐसा परमात्मा निर्विकार होकर के हमें बात करता है क्योंकि परमात्मा के ऊपर कोई विकार कर सकता है, परमात्मा का आनंद नष्ट हो जाए, कभी उसकी चेतना नष्ट हो जाए, कभी होता नहीं। जैसे नित्य उसकी चेतना है, नित्य उसका आनंद है, नित्य उसकी सत्ता है, ऐसे रूप में हमारे अंदर वो विद्यमान है। लेकिन फिर भी सकल जीव जगती में दुखारी कभी दुखी उनको अपने मन में फिर भी दुखा रहता है क्योंकि वो परमात्मा का आनंद हृदय में प्रकट नहीं हुआ। परमात्मा है लेकिन उसका आनंद प्रकट नहीं हो रहा। तो उपासना के द्वारा वो प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है कि नाम निरूपण नाम जतन से नाम का सहारा दो, भगवान का नाम का सहारा लेते हैं। तो जब वो नाम का निरूपण करता है तो देखो भगवान का ये नाम है, ये नाम अपने और नाम जतन से नाम जपन से नहीं नाम जतन में कोई व्यक्ति वहां पड़ेगा जो बन गया नाम जपन से कहते नाम जपन होता है जतन को भी है। जतन के माने हैं नाम का एक विशेष प्रकार से अपने भीतर प्रयोग किया जाता है और जब उस प्रकार से हम उस नाम का प्रयोग करने जाते तो नहीं है लेकिन जपने के साथ साथ एक प्रयोग भी होता रहता है। जब उस युक्ति से उस नाम को हम जपते हैं तब क्या होता है, सोई प्रगट विषय में मूल रतन से, तो वो परमात्मा अपने भीतर वैसे ही प्रकट होता है जैसे कि रत्न का मूल्य प्रकट हो। रत्न का मूल्य कैसे प्रकट होता है, रत्न किसी को मिल गया जैसे इंद्रस्थान बनाया उसने किसी दीवार में से खोल करके रत्न लिया है, लेकिन उसको थोड़ा मारा कितने मूल्य का है, तो जो जौहरी के पास गया उसको लिखा जा रहे थे इसी प्रकार से अपने हृदय में विद्यमान वही परमात्मा विद्यमान है लेकिन उसका मूल्य प्रकट नहीं। पर पहले तो हम उस परमात्मा तक अपने हृदय में पहुंचे और फिर उस परमात्मा का मूल्य प्रकट करेंगे तब उसका पता लगे कि परमात्मा हमारे हृदय में है, ये चेतना स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप, ये प्रक्रिया करनी है उपासना की। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने के पहले जो परमात्मा का स्मरण किया जाता है ये उपासना में मान मुख्य साधना ये कि शास्त्रों में परमात्मा के जो दर्शन चाहे निर्गुण उपासना करें और चाहे सगुण उपासना करें, निर्गुण रूप परमात्मा के जो वर्णन शास्त्रों में है उनका स्मरण करें और जैसे वर्णन है उसी प्रकार का स्मरण करें अपने मन में, निर्गुण उपासना हो। सगुण रूप भी भगवान के वर्णन है अपने शास्त्रों में, भगवान राम के रूप के रूप देवी रूप इन सबका रूपों का वर्णन है, सगुण रूपों का भी वर्णन है, उन सगुण रूपों का स्मरण करें और उसी रूप के अपने स्थान के रूप उनका स्मरण करें। स्मरण करते करते इसलिए उपासना जो है विधान पूर्वक होनी है, उपासना में विधान जो ज्ञान के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना है उसकी प्रक्रिया अलग है, जो उपासना के द्वारा परमात्मा तक पहुंचते हैं उसकी प्रक्रिया दूसरी है, और परमात्मा तक उपासना में पहुंचने की प्रक्रिया क्रमिक है और एक विधान है उसके अनुसार। पहले हम परमात्मा के रूप जैसे मूर्ति है उसको सामने लेते हैं, प्राचीन काल में और जो वैदिक उपासनाएं थी उसमें सूर्य जो है सामने, सूर्य ही मूर्ति है परमात्मा, अग्नि जल रही है तो अग्नि ही परमात्मा की मूर्ति है, इस प्रकार से मूर्तियों को लेकर के इनको मूर्ति माना और उसके बाद तो उसी में व्याप्त परमात्मा का, पहले देवता का उसके देवता का और देवता का भी मूल रूप जो परमात्मा है वहां तक क्रम तक पहुंचे, पहले सूर्य, सूर्य का देवता और सूर्य का देवता ही आगे चल करके परमात्मा है, तो तीन खंडों में बात हम पहले सूर्य की उपासना, सूर्य देवता की उपासना और उसके बाद सूर्य में विद्यमान परमात्मा की उपासना, फिर उसके बाद उपासना उसी सूर्य की अपने ही उपासना, अपने अंदर पहले तो देवता में विद्यमान सूर्य की उपासना और फिर सूर्य का प्रकाश है जो आप तत्व चैतन्य है उसकी उपासना, फिर जो आत्मा है अपने आप में अंदर विद्यमान है वही जो सूर्य में विद्यमान सूर्य का प्रकाश है जो चैतन्य है परमात्मा का प्रकाश, वो दोनों एक ही है। ये यहाँ के उपनिषद में सूर्य उपासना का वर्णन किया गया, हमने अनेक प्रकार की उपासनाएं इसलिए बता दी कि सूर्य ही उपासना सब लोग नहीं करते हैं, अन्य प्रकार की उपासना करते हैं वो भी कर सकते हैं, ये उपासना का एक तरीका इसमें है, तो सूर्य उपासना के जो वर्णन है इसमें आप देख लें यही बात की है। कहते हैं हिरण हरिण पात्र के सत्य मुखम सूर्य देवता ऊपर चंद्रमाते हुए सूर्य दिखाई दे रहे हैं, इस सूर्य देव इसमें सूर्य देवता वास कर रहा है, तो जो चमकता हुआ जो सूर्य है ये चमकता हुआ सूर्य सूर्य देवता इसके भीतर वास कर रहा है, वो कारण से हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम बुद्धि से द्वारा अपने आप धीरे धीरे करके उस देवता तक पहुंचने का प्रयास करें तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आंखों से हम उस देवता को नहीं देख सकते कि सूर्य की तरह कितनी ज्यादा तेज है, सब करो परमात्मा जो उसके भीतर बात कर रहा है कि चंद्रमा का वह सूर्य का प्रकाश उसको ढके हुए है। सत्व भूषण आवरण हे भूषण हे सूर्य देवता आप इसके प्रकाश को एक किनारे पर ढका, तो सत्य धर्माय दृष्टये हम सत्य धर्माय तो हम सत्य के आकांक्षी हैं, हम सब करो परमात्मा की प्राप्त करना चाहते हैं उसी के लिए साधना उपासना कर रहे हैं, इसलिए हमको उस तत्व का दर्शन करने दो, ये सूर्य देवता की प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ में साधना का विधान भी है, कि जब हम सूर्य को देखें तो यद्यपि आंखों से हम सूर्य की किरणों को देखते हैं लेकिन अपनी बुद्धि से इस किरणों को एक किनारे कर दें। मान लो कि सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं है, इनके पूर्व में विद्यमान एक देवता है जो कि इन किरणों के रूप में प्रकाशित हो रहा है, तो देवता तक हम अपनी बुद्धि से पहुंच सकते हैं। देवता का माने एक शक्ति, एक ऐसी शक्ति है जो कि यह प्रकाश के रूप में वो प्रकट हो रही है, उस शक्ति का स्मरण करें। और इसलिए स्मरण करें कि जब हम सूर्यदेव का शक्ति का स्मरण करेंगे तो उस शक्ति के द्वारा से हम स्मरण करें कि वो परमात्मा जिसने भी सूर्य का इस प्रकार का रूप धारण किया है उसका भी स्मरण है। अब देखेंगे ये जो तरीका इस प्रकार का इसमें उपासना का है, भगवान कृष्ण ने जल में जो रस है वो मैं ही हूँ, सूर्य में जो तेज है वो मैं ही हूँ, सीधी सी बात, सूर्य में जो तेज है वो मैं ही हूँ। अब क्या होगा, सूर्य तेज और मैं वो परम परमात्मा ही तेज होकर के सूर्य में विद्यमान है जिस तेज के कारण से ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है। अब ये शास्त्र विधान है, इसी अनुसार जो है वो उपासना है, जो सूर्य सामने दिखाई देता है ये सूर्य का शरीर है और प्रकाश रंग किरण इनको भी किनारे करें तो उसके मूल में एक शक्ति है जो सूर्य देवता है, और सूर्य देवता जो वो भी परमात्मा का एक रूप है, परमात्मा का एक रूप है, सूर्य देवता भी उसका एक रूप है। इस प्रकार की उपासना करने के लिए इसमें कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे का जो श्लोक है इसमें वो सूर्य की उपासना जो बाहर सूर्य की उपासना हम कर रहे थे वो धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाए, अंत में वो उपासना हमें अपने भीतर करनी है, अपने हृदय में।